તારીખ 31/10/1983, શ્રી પરમાગમ સાર, બોલ નંબર 381 અને 382 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 668.
માગુમ સાર મે 395 નંબર કા બોલ ઓકે તો આ આગા ચલ ગયા હે શુરુ સે આખિર સે લે ઓ યહ આત્મ તત્વ તો ગહન હે સીધા હિન્દી કરેંગે આત્મ તત્વ હે ઇસમે અનંત સામર્થ स्वभाव का अनंत सामर्थ्य भरा है और इतना भरा है कि इसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है,
नहीं है।
इतना गहन है कि जिसका कोई पड़वा नहीं है, बॉटम जिसको बोलता है, नीचे तल नहीं है,
तल नहीं है।
जैसे कोई समुद्र में नीचे जाए, माइलों के माइल नीचे चला जाए, फिर भी पानी ही पानी नजर आवे, ऐसे आत्म स्वभाव को देखने वाले, अनुभव करने वाले सभी ज्ञानियों ने ये अनुभव किया कि आत्म स्वभाव की जो गहनता है, गंभीरता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है, अपार अपार ऐसा सामर्थ्य भरा है वस्तु में, तो गहन तत्व है। मति शुद्ध ज्ञान विचार चिंतन विकल्प, ऐसा विचार ज्ञान उसका कोई पता नहीं ले सकता है, अनुमान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ निर्विकल्प मति स्वरूप ज्ञान के अनुभव में आ जाता है। मति स्वरूप ज्ञान के निर्विकल्प अनुभव में आ जाता है, फिर भी आता है ऐसा है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, हद नहीं है, अमर्याद स्वभाव है, ऐसा आ जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है, कोई अनुमानादिक से उसका पता चलता नहीं, विचार चिंतन में उसका कोई समावेश नहीं होता है। इतना गहन तत्व है, उसको आंखों बंद करके, आंखों नीच करके, बाहर का पांच इंद्रिय का व्यापार व्यापार बंद करके और मन संबंध जो विचार है, मन का संबंध से जो विचार करें कि हो आत्म वस्तु अचिंत्य है, नायक है, विनायक है, ऐसा विकल्प से निर्णय करे, वो निर्णय करे, वो भी अभी तो परोक्ष निर्णय है। क्या विषय लिया है गुरुदेव ने, कि गुरुदेव सिंह के वचनामृत है जो ग्रंथ है, सारा ग्रंथ में गुरुदेव के खास खास रचना व्रत चुन करके ग्रंथ रचना किया है, तो उसमें खास खास कहीं अध्यात्म की सिद्धांत की, वस्तु के स्वरूप के सिद्धांत की, दार्शनिक सिद्धांत की, नैतिक सिद्धांत की, आध्यात्मिक सिद्धांत की, कितने करणानुयोग के सिद्धांत की, कितने शरणानुयोग के सिद्धांत की, ऐसे विविध प्रकार के बहुत से बातों का ये संकलन है। इसमें यहाँ निर्णय का विषय लिया है, आगे भी पढ़ा कि 399 में एक बात लिया है गुरुदेव ने, नीचे से चौथी पंक्ति है, आत्मा का अनुभव पहला भी साची जिज्ञासा हुए उसको अव्यक्त रूप से आत्मा की ऊर्ध्वता है। 108 है, 399 नंबर का बोल है। क्योंकि दो बात चलती है, जब दशा की बात चलती है तो सम्यक दृष्टि की ज्ञानी की ऐसी दशा है और अज्ञानी की ऐसी दशा है, ऐसी दो बात तो चलती है। तब दो बात चलती है तो ज्ञानी होगे वो तो ज्ञानी की दशा, ज्ञानी की जिज्ञानी जाने और उनको तो उनका ही अधिकार हो गया। हम रहे अज्ञानी, हम क्या करें, ऐसा करके विचार आता है। यहाँ एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन है गुरुदेव का। निर्णय की बात चली ना, तो निर्णय कहाँ से पैदा होता है? स्वरूप का निर्णय कोई बाह्य क्षोभ में से पैदा नहीं होता है, पंडिताय में से पैदा नहीं हुआ है। जिसका वजन क्षोभसम पर होगा उसकी नजर संयोग पर जाएगी। वो ऊपर की पंक्ति में बोल दिया है कि कषाय की मंदता और ज्ञान का उघाड़ की मुख्यता जिसको होगी, क्या व्रत पादि करे, पूजा भक्ति दया दान करे, उस पर जिसकी मुख्यता होगी और शास्त्र ज्ञान में उघाड़ में चला जाएगा, बहुत जाना बहुत पढ़ा, विस्तार वाला ज्ञान बहुत हो गया, लोग भी वाह 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 करने लग गए, इसकी मुख्यता जिसको होगी उसकी दृष्टि संयोग पर जाएगी, उसकी दृष्टि असंयोगी आत्म तत्व पर नहीं जाएगी। ऐसा कह रहा है, संयोग पर जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो असंग तत्व है, संग बिना का जो तत्व है, संयोग बिना का जो तत्व है, देह बिना का, राग बिना का जो तत्व है, उस पर उसकी नजर नहीं जाएगी। और जिसको आत्मा की ऊर्ध्वता रुचि और जिज्ञासा होवे, उसको तो उसका प्रयास होए बिना रहे नहीं। ये बात का खुलासा इधर कर दिया है कि आत्मा की ऊर्ध्वता रुचि और जिज्ञासा वाले को आत्मिक प्रयत्न, आत्मिक पुरुषार्थ होता है, अंतरंग पुरुषार्थ होता है। तो अनुभव पहले के अनुभव पहले भी उसकी एक नई बात है हमारे पास। वो कहते हैं कि अगर उसको आत्मा की सच्ची जिज्ञासा है, जानकारी की जिज्ञासा नहीं है कि बहुत जान लूँ बहुत पढ़ लूँ, और कषाय की मंदता की अभिलाषा नहीं है, लेकिन आत्मा की जिसको जिज्ञासा है, आत्म प्राप्ति की जिसको भावना है, इसकी लगन है, उसको अव्यक्त रूप से अभी जागृत नहीं हुआ है, आत्मा चैतन्य की जागृति अनुभव रूप में नहीं आई है, फिर भी अव्यक्त रूप से उसको भी इतना पता नहीं है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि उनके परिणाम में आत्मा की ऊर्ध्वता है, इसके परिणाम में आत्मा की मुख्यता है, और इसलिए अभी आत्मा जानने में आया नहीं है, फिर भी अव्यक्त रूप से ऊर्ध्वता होती है, और अनुभव में आता है तो व्यक्त रूप से ऊर्ध्वता होती है। ऊर्ध्वता मैंने मुख्यता, प्रकट मुख्यता, ये अप्रकट मुख्यता है, अव्यक्त रूप से मुख्यता है। ऐसी मुख्यता में, आत्मा की जिज्ञासा में, आत्मा की मुख्यता में मनना संबंध से, मन से आत्मा का विचार करे, चिंतन करे इनका स्वभाव का, और ऐसा अचिंत्य आत्म वस्तु का स्वभाव का निर्णय करे कि ये तो गजब गुण का भंडार है, इसकी कोई सामर्थ्य की मर्यादा नहीं है, अनंत काल निगोद में रहा फिर भी उसमें से उसने कुछ कम नहीं किया, चार गति के परिभ्रमण में कितना ही विपरीत चला फिर भी उसका स्वभाव में से कुछ कम नहीं हुआ। वैसा का वैसा स्वभाव सदा ही रहता है। इसका सामर्थ्य की जिसको पहचान होती है उसको महिमा आती है। पहचान बिना महिमा आती नहीं। इस पहचान को यहाँ निर्णय कहा है। इसका निर्णय होता है तो अब वो निर्णय भले ही परोक्ष है, अभी तो वो निर्णय अभी परोक्ष है। परोक्ष का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष स्वानुभव नहीं हुआ है, इसलिए उसको परोक्ष कहते हैं। लेकिन वो परोक्ष निर्णय भी कब होता है, तो इसका एक शर्त जो है वो आगे रख दिया, पीछे भी रख दिया कि सर्व प्रकार के इंद्रियों का व्यापार छोड़कर, सिर्फ मन से पांचे इंद्रियों का व्यापार छोड़कर, इसका मतलब ये होता है कि जिसका अशुभ रस एकदम घट जाता है, कम हो जाता है, जिज्ञासा के काल में शुद्धात्म तत्व की जिज्ञासा का जोर इतना है कि जिसमें अशुभ रस निर्णय हुए वहां तक तो चार छह महीना अनुभव हुए वहां तक तो बिल्कुल कम हो जाता है, कहीं भी रस नहीं आवे, कोई काम कोई उदय वश सिर पे आ पड़ता है तो उसको बोझा बोझा लगे। वैसे आत्मार्थी का ही एक लक्षण पाया गया है कि उसको सांसारिक काम जो है बोझा है, उसको उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, रस तो आता ही नहीं, लेकिन एरस परिणाम के हिसाब से उस स्थिति में करना पड़ता है, एक बोझा उठाना पड़ता है, जबरन कार्य जिससे कराना पड़े और करे जबरदस्ती करके, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। उसको तो आत्मा चाहिए। इसकी जो भावना है आत्मा की, वो आत्म भावना है, वो भेद ज्ञान में परिणमित हो जाएगी और भेद ज्ञान में भी इसकी वृद्धि होकर अनुभव तक वो ले जाएगी, प्रत्यक्ष अनुभव तक वो चला जाएगा। पीछे भी ये शर्त रखा कि भले प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, परोक्ष निर्णय हुआ, लेकिन मन का, मन से बाहर का बोझा अत्यंत कम कर देवे, मन पर बोझा नहीं रखे, किसी भी काम का, किसी भी फर्ज का, किसी भी बाह्य कर्तव्य का कोई बोझा जिसके मन पर नहीं है। इस विश्व में, इस भाव में, इस काल में, वर्तमान में मेरा कर्तव्य एक सिर्फ मेरा आत्महित है, वो सिवा मेरा कुछ कर्तव्य नहीं। व्यवहार से जितना भी कर्तव्य हो, धर्म क्षेत्र में या संसार के क्षेत्र में, वो मूल में मेरा कर्तव्य नहीं है, सिद्धांत रूप में मेरा कर्तव्य नहीं है। हो नहीं हो, जैसा हो वैसा हो, मेरे कोई लाभ नुकसान नहीं, मुझे कोई इससे कोई लेना देना
नहीं, नहीं है। बराबर
ऐसा बोझा हलवा हो जाए, बोझा इनका एकदम हल्का बोझा हो जाए तो उपयोग उसका निवृत्त होता है। ये विचार हमको बार बार आता है, उपयोग उसका निवृत्त होता है। उपयोग निवृत्त होता है इसका मतलब ये है कि इनकी जो सावधानी है वो स्वकार्य करने में इसकी सावधानी कामयाब होती है, वरना इनकी जो सावधानी है ये दर्शन मोहवश राग में और राग के विषय में वो सावधान रहता है। मिथ्यात्म मोह का लक्षण यही बांधा है। कलम में गढ़वाण में पूजा पड़ी, सिद्ध चक्र विधान,
सिद्ध
भगवान के जो गुण हैं, इनकी गाथाएं सब हैं। इसका मतलब ये है कि आत्म भगवान के गुण की ये गाथाएं हैं, सिद्ध भगवान को या आत्म भगवान को, उसमें अनेक प्रकार के कर्म विनाशनाए वो अर्घ के चढ़ाते हैं। इसमें ये मिथ्यात्मों की ऐसी परिभाषा किया है, पूजा बनाया देखा नहीं, पर की सावधानी वो मिथ्यात्मों का लक्षण है।
पर की सावधानी,
जिसको मिथ्यात्म तीव्र होता है, वो तीव्र मिथ्यात्म में वो तीव्र सावधान होता है अपने संयोग में, राग में, शुभाशुभ राग में, कोई शुभ राग में, कोई अशुभ राग में, जिसका जिसको उदय हो
सावधान,
और इनके विषय में वो बहुत सावधान रहता है, बहुत काळजी करता है, बहुत दरकार इसकी रखता है। ये मिथ्यात्मों का लक्षण भी है, अनुभव तो नहीं दिया है, अनुभव से ये बात का पहलू पकड़ा है। तो यहाँ कहते हैं कि जिसका मिथ्यात्व टलने वाला है और जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है, उसका ये आगे का लक्षण है कि उनका मन का बोझा तब हटता है कि जब उनकी सावधानी कम मंद हो जाती है, तब
हुआ,
अब तो मंद होती है, सावधानी चली जाती है, वो तो सम्यक दर्शन होने से चलती है, लेकिन मंद सावधानी हो गए तो इसका उपयोग पर, इसका मन पर बोझा नहीं रहता है। तो बोझा नहीं रहता तो वो काम कर सकता है, बोझा वाला काम नहीं कर सकेगा। जैसे वो दिया है ना, सिर पे जिसको दो पांच मन का बोझा हो, तो बीज को देखने को जावे, चंद्र को
सही देखता है,
और उसमें वो बिल्कुल ऊपर हो गए, इधर नहीं हो गए आकाश में, तो बोझा रख के काम होगा ही नहीं। वैसा अंतर्मुख होना है, और स्वरूप जो अंतर तत्व स्वरूप है, सर्वथा अंतर अंतर्मुख है, अंतर तत्व स्वरूप है, तो अंतर तत्व को देखने के लिए तो उपयोग को बिल्कुल अंदर में डालने का है। हाँ, मन का बोझा रख के ये काम होने वाला नहीं है, ये बात साफ है। इसलिए मन से बाहर का बोझा अत्यंत कम कर देवे, हल्का कितना होवे कि अत्यंत कम कर देवे, भले ही थोड़ा रह जावे, लेकिन बिल्कुल मुझे इसकी कोई दरकार ही नहीं है, सब काम चौपट हो जाएगा तो मेरी दरकार नहीं रहेगी, न काम सब चौपट हो जाएगा तो, भले ही एक बार तो चौपट हो जाए, तो जोर तो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी सावधानी है इसलिए अच्छा हो रहा है, किसी की सावधानी से कोई बाहर का काम हो रहा है तो बात कतई है, लेकिन उसको डर लगता है, अगर मेरी सावधानी नहीं रही तो सब चौपट हो जाएगा। हमारे ग्रैंड फादर थे, पिताजी के पिताजी, सारे हमारे परिवार पर इनका कंट्रोल था, पिताजी वगैरह पांच भाई हैं, लेकिन सब दादाजी करे वही हो गए। विचार हमको उस वक्त में आता था, हम तो बचपन में थे, लेकिन उस वक्त में विचार आता था, दादाजी कितनी फिक्र करता है, सब इनके बच्चों को, इनके लड़कों को तो करता है, लेकिन हम लोग जो इनके बच्चे भी हैं, हमारी भी करते हैं, इनका ये हो, इनका ये हो, इनका उनको यहाँ लगाओ, उनको उनको, लेकिन वो तो चले जाने वाले हैं, फिर क्या कुछ बिगड़ जाएगा, सब क्या अच्छा नहीं रहेगा, क्या होगा। अभी भी कभी इनका विचार आता है कि कहीं सब अच्छे अच्छे स्थान में है, अच्छे अच्छे जो इनकी उपस्थिति में थे, इनसे सब अच्छी स्थिति में है, बाहर में सारा का सारा परिवार, पांचों भाई और उनके सब लड़के वगैरह, तो इनकी तो कोई सावधानी का तो यहाँ कोई सवाल नहीं है, उनकी कोई गाइडेंस का, मार्गदर्शन का कोई सवाल नहीं है। तो कहीं भी होंगे ये विचार करेंगे शायद मैं नहीं हूँ, फिर भी काम तो अच्छा चलता है, नहीं चलता है। लेकिन जब वो अपनत्व करता है जीव, तो उनको सारा का सारा बोझ आता है, अपनत्व का कारण है। जब अपने आत्मा में अपनत्व छोड़ दिया है और सब बाहर में जहाँ भी उदय है, बाहर में जहाँ भी उदय है, हेनरी फोर्ड के विषय में कुछ नहीं चिंता करेगा कि उनका कारखाने में आग लगी या हड़ताल हुई या इसका प्रोडक्शन बंद हो गया या क्या हो गया। जहाँ स्वयं का उदय है, जहाँ अपना परिणाम लगता है, एकत्व रूप में इतना लगाता है, इतना लगाता है, तो आत्मा का निर्णय करने में भी उनका उपयोग काम नहीं करता, अनुभव करने का सवाल नहीं है। क्योंकि ये बोझा में जो रस आता है, जो रस बढ़ता है, ये रस की मात्रा ऐसी है कि वो ज्ञान को मलिन करता है। वर्तमान जो उघाड़ रूप ज्ञान है, सूक्ष्म रूप ज्ञान है, इसको मलिन करता है। फिर इसमें आत्मा का विवरण बाहर परलक्षित सूक्ष्म में वो पढ़े शास्त्र में है, लेकिन वो आत्मा का उसको कोई भाव नहीं भाषित होता। कहने वाले ने तो अनुभव से कहा, बहुत स्पष्ट व्यक्त रूप से, लेकिन भाव नहीं भाषित होता पढ़ने वाले को। क्यों नहीं होता पढ़ने वाले को? उसका ज्ञान दर्पण मलिन है, ये बात हुआ है। वो पर रस से मलिन होता है, अशुभ रस से अधिक मलिन होता है। शुभ रस भी बढ़ जाए तो उससे भी अधिक मलिन हो जाता है। इधर कषाय की मंदता होती है, लेकिन ज्ञान दर्पण मलिन बनता है जाना है, क्योंकि वो भी एक पर रस है। पर रस है वो स्वरस को मारने वाली चीज है, प्रतिपक्ष में है ये। ऐसा मन का बाहर का बोझा बहुत कम करे, तब मन से अंदर के विचार में रुके, तब तो मन से हल्का होके उपयोग निवृत्त होके स्वरूप के संशोधन में लगे, ऊंडा ऊंडा अंदर में आत्मशोधन करे। लेकिन इतनी निवृत्ति तो उपयोग को चाहिए ना, वो तो बाहर की सावधानी जब मिटती है तब ही अंतर सावधानी में ये काम होता है, बाह्य सावधानी में ये काम नहीं होता। अंदर के विचार में रुकाए और वहां रुके इतना ही नहीं, वहां से भी निकल करके अब आगे जाता है, लेकिन वहां से पसार होना पड़ता है। ऐसा बाहर के रस में रह करके कोई अनुभव में आ जाए, ऐसा तो कभी बनता नहीं। इस रस को उसको मन करना पड़ेगा, इसमें सही प्रकार से मिथ्यात्व का रस मंद होता है। स्वरूप का निर्णय होता है तो सही प्रकार से मिथ्यात्व रस, दर्शन मोह का जो रस है, वो ठीक ढंग से सही रूप से यहाँ पर मंद होता है, अनुभव होता है तो वहाँ टल जाता है, वहाँ मिथ्यात्म होने का नाश होता है। लेकिन पहले तो अच्छी तरह निर्णय की भूमिका में कोई नहीं आवे, योग्य रूप से निर्णय की भूमिका में प्रवेश नहीं करे और उसको अनुभव हो जावे सीधा, तीन काल में कभी किसी को होता। वहां से खिसक करके अंदर स्वभाव के महिमा में रुके,
वाह वाह,
उसको आनंद का अनुभव होवे, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसे स्वरूप की पहचान स्वरूप के निर्णय में होती है, पहचान होती है तो जिसकी पहचान हुई वो अनंत महिमावंत आत्म तत्व है, साक्षात सिद्ध पद है, परमात्म तत्व है, अनंत अनंत दिव्य गुणों का वो निधान है। उस निधान की महिमा आए बिना कभी रहती नहीं। ऐसी महिमा आती है और विकल्प रहे वहां तक वहां रुकना है, लेकिन वो महिमा बढ़ती है, निर्विकल्प आत्म तत्व की महिमा बढ़ती है। एक ऐसा अवसर आता है कि विकल्प का उत्पन्न होना बंद हो जाता है और उस वक्त अंदर में से भीतर में से आनंद का अनुभव सर्व प्रदेश प्रदेश से पूरा चैतन्य गोला में आनंद 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 का समुद्र उमड़ता है। जैसे समुद्र में भरती आती है वैसे अंदर में अपरिमित आनंद स्वभाव भरा है, वो आनंद का जो सागर है वो उमड़ पड़ता है। जैसे कोई पाताल फूटकर प्रवाह निकलता है वैसा मिथ्यात्व का पाताल टूट गया, अंदर में से आनंद का एक प्रवाह दूध निकलता है। आत्मा उस काल में आनंद विभोर बनती है, आनंद में चक्षुर होता है, उसको आनंद विलास कहा है। मस्त है ना, इसलिए विलास शब्द लिया है। जगत में तो विलासी को तो अवगुणी कहता है, लेकिन यहाँ तो गुण का आनंद का विलास है। अनुभव प्रकाश में बिच्छन जी लिखते हैं, भाई तेरा आनंद का विलास तो तेरा ज्ञान कटाक्ष में है, ऐसा करके लिखता है। ज्ञान कटाक्ष लिया है, कटाक्ष करता है, तेरी बात करके मजाक करना उसको भी कटाक्ष कहते हैं। पर आंख का कोणा अक्ष मैंने आंख कट मैंने कोणा, आंख का कोणा से देख लेना सीधा, ऐसा आंख नहीं फिरना, आंख फिराए बिना आंख का कोणे से देख लेना। जैसे यहाँ शांति भाई कहते हैं, देखता हूँ मैं आपके, वो जितना आसान है इतना आनंद का विलास तेरा आसान है, तेरा आनंद का विलास तेरे ज्ञान कटाक्ष में है। देख तेरे सामर्थ को, एक समय में केवल ज्ञान को पैदा करने वाला और परमानंद को भोगने वाला तू, इसका खुद तू धनी है। एक समय दर्शन का आनंद तो क्या चीज है तेरे पास, ये तो आनंद प्रकट करना सहज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा भी तो मन का भूजा हलवा कर ले, निकल जा एक दफे सब संयोग में से, छुट्टा हो जा। जैसे भाई भाई छुट्टा होता है फिर नहीं दिखता है कि भाई इनको घाटा हुआ या इनको क्या, वैसे प्रेजुडाइस होता है तो देखता रहता है, लेकिन अपन तो सज्जन आदमी की बात ले ले रहे, वो देखता नहीं, इनका वो जाने अपना अपन जाने। वैसा मन का बोझा पका करके स्वरूप के महिमा में आवे उसको आनंद का अनुभव होता है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। वो आनंद का अनुभव को सम्यक दर्शन कहते हैं, उपलक्षण से बात किया, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, उसमें अविनाभावी रूप से आनंद होता है, तो आनंद होता है उसको लक्षण से कहने में भी हेतु होता है। कि कई लोग ऐसे मान लेते हैं कि हमको तो सम्यक दर्शन है, भले ही निर्विकल्प आनंद उत्पन्न नहीं हुआ हो, या तो कहते हैं कि ऐसा निर्विकल्प आनंद तो सातवें गुण स्थान में होता है, सम्यक दर्शन तो इधर हो ही जाता है। आचार्य देव गुरु शास्त्र को मानते हैं, दिगंबर में तो है ही, श्वेतांबर उनको गृह मिथ्या दृष्टि कहते हैं, वो आपको पता है, श्वेतांबर लोग उनको ग्रही ग्रही मिथ्या दृष्टि के उनको ग्रही मिथ्या जैसे कोई आपस में गाली लेने का व्यवहार हो लेकिन ये सम्यक दर्शन का अविनाभावी लक्षण है, कोई भूल नहीं कर ले हुए इसलिए उपलक्षण से भी उसको बताया जाता है कि यही सम्यक दर्शन है। आनंद का अनुभव हुए उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, बिना आनंद कोई शास्त्र ज्ञान और चार अनुयोग का ज्ञान वो कोई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान
नहीं है। शुद्धोपयोग हुए,
शुद्धोपयोग हुए, निर्विकल्प उपयोग हुए, स्वसंवेदन रूप पाने का उपाय है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये सिद्धांत रूप है और उसके पाने का यही उपाय है। गहन आत्म तत्व को इंद्रियों का व्यापार बंद करके मन का बुझा हटा के निर्णय में लेते हैं, पहचान होती है, महिमा आती है, तभी उसको अनुभव आनंद और अनुभव होता है, तभी सम्यक दर्शन होता है। यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसमें कुछ मुंझा उलझन में आने जैसा नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई प्रयत्न छोड़ देना नहीं चाहिए कि क्या करें, हमको तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। कई सालों से पूजा भक्ति किया, कई सालों से दया जान पाया, कई साल से शास्त्र स्वाध्याय करते रहे, सब किया, जप किया, तप किया, व्रत किया, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता है, क्या करें? अब तो हमारी मति हमारी बुद्धि काम नहीं करती,
काम नहीं करती,
ऐसा लेने लायक नहीं
नहीं है।
ये हम स्पष्ट कहते हैं कि जो आत्मा मन का बोझा हटा के पांच इंद्रियों के अशुभ व्यापार से कुछ हट करके दो चार छह महीना तो उसका रस टूट जाना चाहिए, भले ही प्रवृत्ति बाह्य उदय करनी पड़े, करनी नहीं है लेकिन करनी पड़े, न चले ऐसा हो, लेकिन रस नहीं आवे, बोझा बोझा लगे, तब उसको बोझा लगे तब उसको हटाएगा नहीं, बोझा ही नहीं लगे तो कैसे हटाएगा। तब उसको स्वरूप की पहचान हो, मन से अचिंत्य आत्म स्वभाव का निर्णय हुए तो परोक्ष रूप में पहला निर्णय आता है, उसमें महिमा आ जाती है, महिमा बढ़ करके अपूर्व अपूर्व महिमा के फलस्वरूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यही उपाय है, ये सम्यक दर्शन का
यही उपाय
है, यही वस्तु का स्वरूप है, अन्यथा सम्यक दर्शन होता
नहीं,
अन्यथा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सामान्य तौर से सम्यक दर्शन का निमित्त तत्व ज्ञान का अभ्यास कहने में आया है, टोडरमल जी ने बताया, लेकिन वहां तो उन्होंने साफ लिखा है कि भले ही सम्यक दर्शन का निमित्त तत्व ज्ञान का अभ्यास है, फिर भी किसी को हो वा नहीं हो, इसका यही मतलब है कि अगर कोई तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाला मन का बोझा हटा करके उपयोग निवृत्त करके बाह्य सावधानी छोड़ देने पर अंतर सावधानी में आता है, निर्णय करता है, तो उसको अनुभव होता है, स्वरूप की महिमा आती है, उसको अनुभव होगा, होगा और होगा ही, उसमें होगा वा नहीं होगा वो बात नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है, सिद्धांत है, अन्यथा अभ्यास करने वाले को भी नहीं होगा, होगा वा नहीं होगा, नहीं होगा भाई उसको नहीं होगा, होगा नहीं उसको होगा, ये बात भी फाइनल है, दोनों बात निश्चित है, होने वाली भी बात निश्चित है, नहीं होने वाली भी बात निश्चित है, कितना भी शास्त्र ज्ञान कर ले, कितना भी शास्त्र पढ़ ले, फिर भी उससे कोई सम्यक दर्शन होता है ऐसी बात नहीं है। उसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। स्वभाव मतलब अभिप्राय में ये बात ऐसे नहीं रखना, ये तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात है, हमारे लायक नहीं है, हमारे काम के नहीं है, हम तो रहे घरबारी, हम तो रहे संसारी, हम तो रहे व्यापारी, हम तो ये सब कोशिश से हमारा ये नाम चलाते हैं, ये गाड़ी हमारी कोशिश से चलती है, ये बात हमारे बड़े बड़े महात्माओं की बात होगी, ये तो ऐसी बात रखना
नहीं,
ये अभिप्राय छोड़ देना।
छोड़ देना।
चारों गति में सम्यक दर्शन होता है। ऊपर तो ले लिया, सातवीं नारकी की भीषण वेदना में पड़ा हुआ है, वहां को उपदेश का देव गुरु शास्त्र का निमित्त नहीं पाया जाता, फिर भी पूर्व संस्कार के वश वहां भी वो गुलाट मारता है, उस योग तो अंदर में चला जाता है, जाता है आनंद विभोर बनता है। नारकी के सब प्रकार के वेदना के संयोग क्षण भर के लिए बिल्कुल जैसे है ही नहीं। सोबानी जी हमारे एक दफे चर्चा में कहा कर लिया है शायद कि अभी तो साधक दशा है, चौदहवां गुण स्थान होगा, आगे जाके अंतिम गुण स्थान होगा, मैंने चरम सीमा जो है ये साधक दशा की आ जाएगी, फिर सिद्धालय में जाना होगा, सब सामने दिखता है सब। लेकिन वो तो होगा तब होगा पर्याय में, मैं तो अभी सिद्धालय में हूँ, ठीक है, वो तो होगा, क्षेत्रांतर होगा, फिर तो मनुष्य क्षेत्र में से जो भी आत्मा सिद्ध होती है विद्यालय में समय मात्र में चल जाती है, ऐसा क्षेत्रांतर पर्यायांतर सब होता है, लेकिन वो काम तो सब पर्याय का पर्याय में होगा। मैं तो अभी विद्यालय में विराजमान हूँ, मेरे कोई आना जाना नहीं है, सीध स्वरूप है, उसमें व्याप्य व्यापक रूप में अपना अनुभव करता है, व्याप्य व्यापक रूप से अनुभव करता है, अभेद होकर अनुभव करता है। तो कैसा है कि हाँ उसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है, क्या वो घरबारी संसारी नहीं थे, सभी चारों गति में सातवीं नारक तो प्रतिकूल में प्रतिकूल, देवलोक में भी कोई पा लेता है, पाबंदी नहीं है, तो वहाँ भोग भोग बहुत है, नहीं होगा ऐसा कठिन होता है, प्रतिकूल है, ये सब प्रतिकूल विषय है, रस बढ़ने का विषय है, पर रस बढ़ने के सब प्रकार है, तो ये पर रस जरूर अनुभव के लाइन से प्रतिकूल जरूर है, लेकिन कोई अशक्य नहीं है कि वहाँ उपयोग नहीं फिरा सकता, वहाँ भी फिर सकता है, रेंज में भी फिर सकता है, भले ही कितना भी ज्ञान सीमित हो गया है, उघाड़ मंद हो गया है, कम हो गया है उघाड़, फिर भी प्रयोजन के विषय में बराबर अंदर में भेद ज्ञान करता है, वो तो देव से भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है, पंचम गुण स्थान में जाता है, देव नहीं जा सकता, सर्वार सिद्धि का देव नहीं जा सकता, कायिक समय दृष्टि भले ही हो गए, एक अवतारी है, एक अवतारी बाकी आ गया, बिल्कुल ऊंचा है, एक बार नहीं सर्वथा ऊंचा है, इस दशा में तो ऊंचा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। खरेखर तो देव वो है कि जो तिरियंश के खोड़िया में देह में पड़ा है, वो देव है, देव है, दिव्य गुणों को जिसने प्रकट किया वो देव नहीं है तो क्या है, गणधर देव उसको देव कहते हैं, सत्यकरण साहब का आचार्य कहते हैं गणधर देव ने उसको
देव कहा,
चांडाल को भी देव कहा, चांडाल को छूते नहीं। छूत अछूत की बात नहीं है, वो तो देव है, नंदनी है, प्रणाम करने लायक है। स्वभाव का आश्रय तो मुंझवण को उलझन को टाल उसको नाश करे, अभाव करे, ऐसा है। उलझन तो तब होता है कि जब उसका उलझन क्या चीज है, उसका एक थोड़ा पृथक्करण करे तो एक काम बाहर के विषय में संयोग में कोई आदमी कोई जीव करना चाहता है और वो नहीं हो पाता है तो उसको टेंशन आता है, उसको उलझन कहते हैं, तनाव आता है उसको कि क्यों नहीं होता है, ये होना ही चाहिए, जैसे कैसे भी होना चाहिए, होना क्यों नहीं हो रहा है। किसी अनेक प्रकार के संयोग जुटाने पर भी नहीं होता है तो उलझन में आता है। कैसे ऐसे सब प्रकार की जो उलझन है उसका नाश हो जाए, ऐसा ही मार्ग है। इसमें कुछ ये स्वरूप का जो आश्रय है वो तो सर्व प्रकार के उलझन को या असमाधान को नाश करने का उपाय है, तो नाश कर देता है। उलझन में समाधान नहीं रहता, टेंशन आता है, तनाव आता है, तो उसको समाधान नहीं रहता। ऐसा करने गए और ऐसा उल्टा हो गया, उसको सहन नहीं होता है। ऐसे कहे सब प्रकार के असमाधान को नाश करने का ये रास्ता है। सर्वांग समाधान स्वरूप है, आत्मा ही सर्वांग समाधान स्वरूप है, तो उसका अनुभव में असमाधान कहाँ से रहेगा। इसके अनुभव में कोई असमाधान रहने वाला नहीं है। ज्ञानियों ने जगत को चैलेंज दिया है कि एक भी समस्या लाओ जिसका समाधान न होवे हमारे पास। ठीक है, दुनिया में जगत में तो अनेक प्रकार की समस्या होती है। हाँ, बड़े बड़े बुद्धिमान कहलाने वाले लोग की कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, चर्चाएं होती है, विचार विमर्श होता है और फिर इसका समाधान ढूंढा जाता है। सम्यक दृष्टि को तो ऐसा कोई प्रयत्न बाहर में करना ही नहीं पड़ता है, उसको कोई समस्या ही नहीं है, समाधान रूपी इसकी परिणति चलती है। सर्वांग समाधान, चाहे देवलोक का उदय हो, सारा जगत अनुकूल हो जाए या सारा जगत प्रतिकूल हो जाए, अनुकूलता और प्रतिकूलता का गंज खड़ा हो जाए, लेकिन उनको जो समाधान है बिल्कुल ऐसा निराकुल समाधान है, कहीं भी समस्या का सवाल उनके लिए नहीं है। अभी तो संवेदना लोग असमाधान में रहते हैं कि शरीर का रोग हो जाता है, किसी को ये पेनक्रिया फेल हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है, किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है, किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट का दुखावा चल जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को कहीं हो जाता है, किसी ये सब टेंशन का कारण है। टेंशन मतलब तीव्र रस, असमाधान संयोग का परद्रव्य का तीव्र रस और तीव्र असमाधान, तीव्र मुझवान, तीव्र उलझन, सब इतना तीव्रता से पैदा हो जाता है, सारा आत्मा तो कहीं ना कहीं खो जाता है, लेकिन इसकी असर परिणाम के निमित्त से साथ में साथ शरीर पर दिखने में आती है। जैसे क्रोध के सब चेहरे पे दिखती है, वैसे ये उल्टे परिणाम के असर शरीर के रोग में प्रदर्शित हो जाती है। उसमें तो ये सांसारिक जीवन में भी दुखी नहीं होने में ये कामयाब हो गया, पारमार्थिक जीवन तो एकांत सुखी ही सुखी है, उसमें तो कोई दुख का सवाल नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी दुख नहीं हो, उलझन नहीं हो, रोग नहीं हो, शोक नहीं हो, दरिद्रता न हो, दरिद्रता मैंने पैसा वाला बजाय बात नहीं है, परिणाम में दरिद्रता नहीं रहती, चाहे सुबह का सुबह खाए, शाम का है खाए, 70 लाख की आबादी में एक मैं ही सुखी हूँ। देखा जीवन परिचय में आया, रहने का घर नहीं था उसको, वैसे सैनिटोरियम में रहते थे, धंधा करने को आए कलकत्ता में, पैसे नहीं थे, अजमेर तो तब छोड़ा जब पैसे के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढना पड़े, फिर भी सुखी था, सारे आबादी में मैं सुखी हूँ। कौन सा सुख है, कोई गाड़ी घोड़े का सुख नहीं था,
नहीं।
तो परिवार साथ में थे, अकेले आए, परिवार भी साथ में, परिवार का सुख, संयोग का सुख, पैसे का सुख, खाने पीने का सुख, कुछ नहीं, आत्मा के अंदर की मस्ती का सुख है,
वाह वाह,
जो कहीं भी असमाधान में आता ही नहीं, जोड़ में
आता ही नहीं,
आता ही नहीं। अभी तो लोग बाह्य क्रियाकांड में चढ़ गए हैं, धार्मिक क्षेत्र देखते हैं गुरुदेव तो देखते हैं कि लोग तो बाह्य क्रियाकांड में चढ़ गए हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, वो करो, वो करो, दां धूं धमाल करते हैं, तो कुछ किया ऐसा संतुष्ट होते हैं, मान लेते हैं, ऐसे क्रियाकांड के रस में शुभ, वो तो शुभ योग है, फिर भी अशुभ चालू है, मिथ्या दृष्टि के शुभ उपयोग में अशुभ पड़ा है, सम्यक दृष्टि के शुभ उपयोग में रस नहीं है ना, उसको तो रस नहीं है, जैसा अशुभ का नहीं है उसका ऐसा शुभ का भी नहीं है, अंतर से नहीं है, आता है थोड़ा लेकिन अंतर से नहीं है, तो इसके शुभ में अशुभ नहीं है ना, फर्क है, जाति फर्क है, दोनों की शुभ में जाति फर्क है,
क्या फर्क,
उसके उसके मिथ्या दृष्टि के शुभ में अशुभ है, मिथ्या तो का अशुभ साथ में है, वो सोचता है कि इतना कुछ करूँगा, ये पूजा करवाया, वो करवाया, दान दिया, वो कर दिया, वो किया, व्रत किया, तो कुछ इसका फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो अनुकूलता रहेगी, धनार्थी का अर्थ किया, भगवान गए थे वहीं प्रवचन किया, तो धनार्थी और मोक्षार्थी 17 गाथा का जो शब्द है ऊपर से पढ़ा लिया, तो जो धन कमाने को पड़ा है, कारखाना लगाता है, दुकान लगाता है, वही धनार्थी नहीं है, आचार्य के अभिप्राय में कोई बात नहीं है, जो मोक्षार्थी नहीं है वो सब धनार्थी ही है, क्योंकि जो धन है वो क्या काम में आता है, कि बाह्य अनुकूलता में वो साधन उसको ले ले, उसको खरीदे, उसको खरीदे, मकान करे, वो करे, फर्नीचर करे, सब अनुकूलता के साधन में ये रुपये हैं, पाउंड, डॉलर, स्टर्लिंग, जो भी करेंसी है उसको धन कहते हैं, वो बात इतनी मर्यादित मानी है, जिसको अनुकूलता चाहिए त्यागी होकर भी, जिसको बाह्य प्रवृत्ति छोड़ के भी अनुकूलता में रहना है, अनुकूलता के साधन जिसको चाहिए संयोग में, और जिससे साता हो में ऐसे रहना है, साता में रहना है, भले आत्मा का आनंद नहीं मिले लेकिन साता तो है, साता नहीं है, ऐसा साता का सुख को चाहने वाला सब धनार्थी है, मोक्षार्थी नहीं है तो सब धनार्थी है, सोनगढ़ वाले साथ में से एक भाई ये अर्थ अच्छा निकाला, हम तो ये समझते थे कि हम तो धंधा छोड़ के सोनगढ़ बैठ गए हैं, चलो धनार्थी तो नहीं, मोक्षार्थी तो है कि नहीं है, आपकी बात से तो ये बात लगता है कि हम भी मोक्षार्थी नहीं है, अभी धनार्थी रह गए, क्योंकि थोड़ी अनुकूलता रहती है, साता रहती है, कोई उपद्रव नहीं है, सोनगढ़ में क्या उपद्रव है, पैसे पैसे तो है, आजीविका का तो व्यवस्था हो चुकी है, शांति से रहते हैं, साता है। मोक्षार्थी की बात उसको है कि जिसको पूर्णता का लक्ष्य हो गए, वो सूत्र लिया था, स्वाध्याय मंदिर वाला जिक्र किया था, स्वाध्याय मंदिर में इतने बड़े बड़े अक्षर से लिखा है कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है, वही शुरुआत है। सम्यक दर्शन के लक्ष्य से शुरुआत होती है ऐसी भी बात नहीं लिखी है, मोक्षार्थी की बात लिखी है, मोक्ष की बात लिखी है। जिसको परिपूर्ण शुद्ध होना है, परिपूर्ण निर्दोष होना है, उसी को ही शुरुआत होगी, दूसरे को शुरुआत होने वाली नहीं है, वास्तविक शुरुआत नहीं होगी। गलत शुरुआत तो अनंत में किया है, गलती में रहा है, उसको शुरुआत ही नहीं है, उल्टी शुरुआत है। कहते हैं कि जिसको बाह्य क्रियाकांड का रस चढ़ गया है, उसको भी वो बोझा है, वो उसका उपयोग भी निवृत्त नहीं हुआ है, उसको तो मन से भी स्वरूप का सच्चा निर्णय करने का अवसर नहीं है, वक्त नहीं है। इसका मतलब है कि उसको प्रसंग नहीं है कि मैं मेरा स्वरूप का निर्णय, वो तो शुभ क्रिया के क्रियाकांड के रस में इतना चक्चूर है। इसलिए ही पर सावधानी को मदिरापान का उपमा दिया गया है, मिथ्यात्मों को जैसे मध्य से कोई चक्षुर होता है, भान भूलता है, वैसे पर रस में यही हालत होती है कि बस इतना रस ही चढ़ता है, बस जैसे आत्मा का अनुभव करना और उसका कोई निर्णय करना, ये बात ही खत्म हो जाती है। उसको प्रसंग नहीं है, उसको कोई अवसर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि चाहे अशुभ उपयोग अशुभ उदय, योग और उपयोग अशुभ हो या योग और उपयोग शुभ हो, सावधान रह करके स्वरूप के मैं नायक हूँ, ज्ञायक 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 ऐसा मैं जो नायक हूँ, ज्ञान स्वरूप की आत्मा हूँ, इस लक्ष्य से, इस जागृति से रस को बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहिए, बिल्कुल तीव्र रस से किसी भी उदय में प्रवृत्ति करना नहीं चाहिए। मंद रस से हो तो ठीक है, हमारी इसमें सावधानी नहीं है। मंद रस तो वैसे कोई वैराग्य का कारण हो जाता है तो लोगों को रस मंदा होता है इस निकारे का, लेकिन स्वरूप के रस लक्ष्य से मंद होना ये सही रूप से मंद होता है,
स्वरूप के लक्ष्य से मंद होना है।
मैं नायक हूँ ऐसा जागृति में आकर के,
वाह वाह,
शुभाशुभ कार्य और शुभाशुभ परिणाम में रस का मंद होना ये सही रूप से परस मंद होता है, तो वहाँ उनका जो ज्ञान दर्पण है उसकी मलिनता थोड़ी कम हो जाती है, तो उसको निर्णय होने का अवसर आता है, मैं ऐसा हूँ, उसको सिद्ध पद का भाव भाषण होता है, तो उसको पहचान होती है, ऐसा कहने में आता है, तो उनको सही महिमा आती है, तो उनको सम्यक दर्शन होता है, दूसरे को होता। ऐसे क्रियाकांड या शुभ उपयोग वाले को भी यहाँ गुरुदेव ने चेताया है कि तीव्र रस से जाना
नहीं। जय हो पंच पार्वती कानपुर देव नो, जय हो सनातन दिगंबर तय धार मनो, जय हो औति काले